नमस्कार भारत, तारीख 27 सितंबर, दिन रविवार, मैं हूं विनीत खरे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सिलिकॉन वैली, कंपनी प्रमुखों से की मुलाकात। भाजपा सांसद आरके सिंह ने बिहार चुनाव में टिकट के बदले पैसे के लेन देन का आरोप लगाया।
आपने क्रिमिनल्स को टिकट दे दिया, आपराधिक छवि के व्यक्तियों को टिकट दे दिया। क्यों दे दिया आपराधिक छवि के व्यक्तियों को टिकट? पार्टी ज्वाइन नहीं किया उसको आपने टिकट दे दिया।
आरक्षण विवाद और रामविलास पासवान पर क्या सोचे जीतन राम मांझी की सुनी गए खास बातचीत में।
रामविलास पासवान जी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। सोशियो और एजुकेशनल जो कंडीशन हमारा है ठीक नहीं होता है तब तक आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
और अनिल शास्त्री ने अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाना चाहिए। मोदी शनिवार को न्यूयॉर्क में G4 देशों के विशेष सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो अर्थव्यवस्था, सभी महाद्वीपों की प्रमुख आवाज़ों को सुरक्षा परिषद में जगह मिलनी चाहिए। G4 देशों में भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राज़ील शामिल हैं जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। मोदी आज IT क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के दफ्तर जाएंगे और उनके अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण के दौरान पिछले दिनों मक्का में हज के दौरान हुए हादसे की जाँच की मांग की है। हसन रूहानी ने पिछले 25 सालों में हुई इस सबसे बड़ी दुर्घटना को हृदय विदारक बताया और संयुक्त राष्ट्र में से इसकी जांच कराने की मांग की। मक्का में
لازم میدانم با ابراز تاسف شدید از حادثه
हसन रूहानी कह रहे थे कि मक्का में बुधवार को ही इस घटना पर मुझे दुख है। मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खो दिया। साथ ही साल हज यात्रियों के साथ हुई इस घटना और कुछ अन्य घटनाओं के कारणों की जांच की भी मांग करता हूं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। इस हादसे में 769 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें करीब 130 लोग ईरान से थे। हादसे में लगभग 1000 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के अपने पहले संबोधन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विकासशील देशों की मदद के लिए $2 अरब के एक फंड बनाने की अपील की। उनका कहना था कि इस फंड को अगले 15 साल में $12 अरब तक बढ़ाया जाए। उन्होंने बेहद गरीब देशों को दिए गए ऋण को माफ करने का भी वादा किया। हालांकि ये नहीं बताया कि कितना ऋण माफ किया जाएगा और किन देशों को ये फायदा मिलेगा। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सीरिया के भविष्य निर्माण में भूमिका नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश में जारी अव्यवस्था के लिए वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि यदि सीरिया के लोगों को पश्चिमी देशों ने यही बताया होता कि उनका भविष्य बशर अल असद के साथ है तो वो ये कभी स्वीकार नहीं करते। गुरुवार को जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा था कि सीरिया के भविष्य पर होने वाली शांतिवार्ता में राष्ट्रपति असद को भी शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन अन्य देश इससे सहमत नहीं थे। मेक्सिको में हजारों लोग 43 छात्रों के गायब होने के एक साल पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पिछले साल इन छात्रों के अपहरण पर देश भर में गुस्सा भड़क गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा जारी है, वो भी सिलिकॉन वैली में हैं। कुछ कंपनियों के प्रमुखों से उनकी मुलाकात हो चुकी है, कुछ से होनी है। बताने के लिए सैन जोस कैलिफोर्निया से ब्रिजेश उपाध्याय इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। ब्रिजेश, पूरी जानकारी दें।
विनीत, इस समय में अब से लगभग एक घंटे के बाद एक डिजिटल इंडिया डिनर होने जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण देंगे और वहां पर सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हुए हैं। लेकिन आज पहले जो दिन भर का उनका कार्यक्रम रहा उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि दिन में तो जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे उनकी एक मुलाकात हुई, कुछ लोगों से बातचीत हुई, सिख समुदाय के लोगों से अलग से उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक वो उनके होटल में मिलने आए प्रधानमंत्री मोदी से। और एक जो खास बात उन्होंने कही कि भारत के साथ एप्पल का एक खास एक असाधारण सा संबंध है, क्योंकि एप्पल के जो संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, वो उन्हें जब इंस्पिरेशन एक तरह से प्रेरणा लेने की जरूरत पड़ी थी तो वो भारत गए थे, ये उन्होंने कहा टिम कुक ने। और अभी इस समय में गूगल के जो प्रमुख हैं सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। और उसके बाद ये जो डिनर का जिसका जिक्र मैंने किया डिजिटल डिनर, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जमा हैं, ये सुनना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल विजन है क्या। लेकिन साथ ही एक और बात जो बदलाव आया है कि लोग ये भी कहना सुनना चाह रहे हैं उनसे कि जब 50 करोड़ लोग इस दशक के अंत तक अंदाजा है भारत में इंटरनेट पर आ जाएंगे, तो उसमें इन कंपनियों से किस तरह की के मौके प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, या फिर वो केवल इसलिए इनसे बात कर रहे हैं कि इनसे फायदा ले सकें या उनका भी फायदा है। तो एक तरह से कंपनियां जो है ये सुनना चाह रही हैं कि यहाँ की जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनके लिए भारत में मौके खुल रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी वो रास्ता और आसान करेंगे कि यहाँ की कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी भी वहां पर ला सकें।
एक सवाल और ब्रजेश, आपने उम्मीदों की तो बात की, लेकिन जो चुनौतियों का जिक्र है, क्या वो भी कंपनियां बात कर रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था या उनकी उम्मीदों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं?
देखें, वो जो पिछले दो दिनों की जो बातचीत हुई है न्यूयॉर्क में, खासकर इस मामले पर काफी बात हुई है, और जो दो तीन दिन पहले जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ भारत और अमरीका का, उसमें ये बात अक्सर कही गई कि भारत में बिजनेस करना अभी भी आसान नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो वायदे किए थे पिछले साल जब वो यहाँ आए न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वेयर गार्डन में, तो वो उसको पूरा करें। मैं जैसे कमल रेखी हैं यहाँ पर बहुत जाने माने जो पेंटियम के संस्थापक में से थे, उन्होंने अमेरिकी मीडिया को दिए हुए बयान में कहा कि जिनसे भी मैं बात करता हूँ तो उनमें थोड़ी सी निराशा नजर आती है, खासकर सिलिकॉन वैली के भी जो कई बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे थे, कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह के सपने दिखाए हैं लोगों को कि किस तरह से हम आपके लिए सब कुछ का आसान कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है भारत में। और वो कुछ जो तीखे सवाल हैं वो जाहिर है वो सामने इस तरह के जो डिजिटल डिनर है इनमें नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन बंद कमरों में उस तरह के बातें उठाई जा रही हैं। और एक जो लोगों से जिनसे मेरी बात हुई, जो लोग सिलिकॉन वैली के अंदर की काफी खासी जानकारी रखते हैं, उनका कहना था कि ना सिर्फ बंद दरवाजों के अंदर बात हुई है बल्कि एक तरह से दबाव भी डाला गया है प्रधानमंत्री मोदी पर, और दबाव डाला जा रहा है कि अब रास्ता को आसान कीजिए, अगर फेसबुक, अगर गूगल, अगर माइक्रोसॉफ्ट अपनी टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हैं तो उसमें ये जो डर है भारतीय कंपनियों को कि अगर वो पूरा इंटरनेट ये अगर ले आएंगे बहुत सस्ते में ले आएंगे और अच्छे तरीके से तो उनका बिजनेस चौपट हो सकता है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए एक तरह से दबाव भी डाला जा रहा है उन पर।
शुक्रिया ब्रजेश, और कोशिश होगी हमारी आपके पास हम दोबारा आए अगले कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। ब्रजेश उपाध्याय ने बात की वेंकटेश शुक्ला से भी, जो द इंडस एंटरप्रेन्योर, जो भारतीयों को कंपनियां शुरू करने में मदद करती है और दुनिया में एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, उसके अध्यक्ष हैं वो। और ब्रजेश ने वेंकटेश शुक्ला से पूछा कि उनकी नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीदें हैं।
हमको इस बात से बड़ी खुशी है कि उनने जो है स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव लिया है। ये जो है पहली सरकार है जिसने जो है इतना एम्फेसिस दिया है स्टार्टअप को। हमारी उम्मीद उनसे ये नहीं कि यहाँ जाके कुछ अनाउंसमेंट वगैरह करेंगे, हमारी उम्मीद ये है उनसे कि यहाँ आके जो है वो समझें कि सिलिकॉन वैली की इकोनॉमी का राज क्या है, कि किस तरह के रेगुलेशंस, किस तरह के रूल्स जो हैं इस तरह के जो है स्टार्टअप इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए ज़रूरी हैं। मेकिंग इट अ गोल इज़ द फर्स्ट स्टेप। एक बार वो बन गया उसके बाद जो देन नेक्स्ट अगला सवाल ये उठता है कि भाई इसको कैसे करें, क्या क्या चीज़ में चेंज करना है। बहुत सी चीज़ें चेंज करना है इंडिया में। अब जैसे एक छोटी सी आपको एक बता दूँ कि अगर आपके पास पैसा है कैश का, आप उसको बाहर भेज सकते हैं और एनोनिमसली थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। उसमें अगर पैसा जो बनता है उसमें जो अगर पैसा बनता है तो उसमें बिना टैक्स दिए, बिना कोई सवाल पूछे, एनोनिमसली यू कैन टेक इट बैक थ्रू द पार्टिसिपेटरी नोट ना. देश के लिए जो है, स्टॉक मार्केट में कोई आदमी इन्वेस्ट करके पैसा बनाता है, उससे ना तो कोई जॉब क्रिएट होता है और ना ही जो है वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है. सेम थिंग इन रियल स्टेट, ना तो ये होता है ना वो होता है. स्टार्टअप में जो है वो जॉब्स क्रिएट करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वेल्थ को. तो यू वुड थिंक कि सबसे आसान तरीका जो होगा वो स्टार्टअप में जाने का, सबसे और सबसे इंसेंटिव उसमें होंगे. अभी बिल्कुल उल्टा है. तो ये जो है, कम से कम ये अगर समझ में आ जाए बात, और ये जो इन सब चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगता है, इन सब चीज़ों के लिए जो है स्टेट्स का कोऑपरेशन ही लगता है, ये सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में. तो हमारी तो उम्मीद यह है कि इतना समझ लें कि ये चीज़ें जो है अपने को बदलना है, क्योंकि देश में एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है.
ये बताइए कि पिछले एक साल में उन्होंने जिस तरह के वायदे किए, उसके बाद और अब में आपको ये उम्मीद अभी भी है कि, क्योंकि बहुत लोग अब निराश हो रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी जो सिलिकॉन वैली के जो काफ़ी जो दिग्गज लोग हैं, कमल रेखी साहब, उन्होंने बयान दिया कि जैसे लोगों की अब उम्मीद ख़त्म सी हो रही है.
मुझे नहीं मालूम कि उन्हें जो है वहाँ इंडिया में जो है लोगों का क्या एटीट्यूड है सब, पर मुझे ये लगता है कि अभी तक तो किसी ने उम्मीद भी नहीं बढ़ाई थी. कम से कम ये जो उसकी बात कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर रहे हैं, इसके पोटेंशियल को रिकग्नाइज कर रहे हैं, दैट फॉर मी इज़ अ बिग फर्स्ट स्टेप. अब धीरे धीरे जो है, अब पता नहीं वो तुरंत करें कि एक साल बात करें कि तीन साल बात करें, आई डोंट नो अबाउट दैट, यू नो आई हैव नो आइडिया. बट द फैक्ट दैट ही इज़ टेकिंग टाइम, कि यहाँ आ रहे हैं, दो दो दिन बिता रहे हैं, यू नो ही इज़ सेंडिंग सम सिग्नल्स.
और आज रात में आप लोग उनके लिए जो डिनर होस्ट कर रहे हैं, क्या सुनना चाहेंगे आप उनसे?
वो डिनर तो जो है उनके लिए है, वो बताएं कि डिजिटल इंडिया डिनर में डिजिटल इंडिया का उनका क्या विजन है, डिजिटल इंडिया का उनका क्या तरीका है, और वो क्या किस तरह का कोऑपरेशन चाहते हैं वहाँ इंडिया से या सिलिकॉन वैली से. ये तो दिस इज हिज अपॉर्चुनिटी टू आउटलाइन हिज विजन. वी हैव नो एक्सपेक्टेशन अदरवाइज.
ये थे द इंडस एंटरप्रेन्योर के वेंकटेश शुक्ला. सिलिकॉन वैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. उनके स्वागत समारोह में एक लंबे नृत्य प्रदर्शन के लिए सिलिकॉन वैली की मोना खान डांस कंपनी को चुना गया है. मोना खान मूलतः मुंबई से हैं और वो 15 साल पहले MBA करने अमरीका आई थी. ब्रिजेश उपाध्याय ने उनसे पूछा कि जब नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए उन्हें चुना गया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी.
हमें सिर्फ एक फ़ोन कॉल आया एक दिन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे बेरिया में और हमको सिलेक्ट किया गया है कि परफॉर्म करने के लिए. तो तभी मैंने वापस क्वेश्चन पूछा आई वांटेड टू हियर द आंसर अगेन कि क्या, कौन सा इवेंट क्या हो रहा है. तो अगेन उन लोगों ने रिपीट किया कि नहीं, मोदी जी आ रहे हैं और बड़ा सा फंक्शन है. तो फिर बस वही, फिर हमको बोला कि प्रपोजल दे दो एक. तो हमने एक एक्ट का प्रपोजल बना दिया, उनको दे दिया. बस उनको बहुत पसंद आया, फिर उन लोग ने हमको थम्स अप दे दिया और रिहर्सल शुरू हो गई.
आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पहली बार वो फोन कॉल मिला?
मैंने बोला है ना, वो दो तीन बार मैंने भाई कौन आ रहा है, हमको सिलेक्ट किया, अरे मोदी जी आ रहे हैं. मेरे को वही क्वेश्चन दो तीन बार हमने पूछा, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतना हिस्टोरिक एपिक इवेंट हो रहा है और कि इतने सालों बाद यू नो कोई आ रहा है प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सिलिकॉन वैली में, और हमको चुना गया यहाँ पे. तो बहुत खुशी हुई. तो मैंने थैंक यू बोल दिया ऑर्गेनाइज़र को, और फिर फ़ोन रखते ही हमारी सारी कोर टीम को मैंने फ़ोन किया फटाफट. ये बहुत बड़ी बात है.
प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपकी राय क्या है?
मोदी जी आई थिंक इज सो मच अबाउट चेंजिंग एवरी लाइफ, एवरी मतलब हर जितने भी बिलियंस ऑफ लोग हैं इंडिया में, आई थिंक उनको वो डिटर्मिनेशन है कि इंडिया को चेंज करना है फॉर द बेटर. उनको बहुत इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, कोलैबोरेशन में, टू ब्रिंग यू नो टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मेक इट बेटर फॉर इंडिया. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स, मतलब इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी.
आप भारत में कहाँ से आती हैं?
हम मुंबई के हैं.
और आप पहली बार यहाँ आई और आपने डांस सेटअप किया या कुछ और करने आई थी और आपने डांस सेटअप किया?
हम आए थे 2000 में MBA करने ईस्ट कोस्ट में. तो ईस्ट कोस्ट में MBA ख़त्म करके मैं बे एरिया में मूव हुई जॉब करने के लिए. और फिर जॉब करते ही मैंने साइड में थोड़ा वॉलंटियर किया.
ये थी मोना खान. और अब कुछ भारतीय राजनीति की चर्चा. बिहार के आरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आर के सिंह ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जाहिर की है. आर के सिंह ने पार्टी पर आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो ऐसे उम्मीदवारों का प्रचार नहीं करेंगे. एक रिपोर्ट के साथ प्रगति सक्सेना.
बिहार के चुनावी समर में शक्ति परीक्षण के पहले बागी नेताओं की बढ़ती संख्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बागी नेताओं की लिस्ट में नया नाम जुड़ा है, आरा से पार्टी के सांसद आर के सिंह का। वो विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण से नाराज हैं। आर के सिंह ने आरोप लगाया कि पार्टी ने अपराधी छवि के लोगों को टिकट दिए हैं। सिंह ने यह भी कहा कि कुछ जगह पैसे लेकर टिकट देने की शिकायत भी मिली है। उन्होंने एक चैनल से बातचीत में कहा,
देखिए आपने क्रिमिनल्स को टिकट दे दिया, आपराधिक छवि के व्यक्तियों को टिकट दे दिया। क्यों दे दिया आपराधिक छवि के व्यक्तियों को टिकट? पार्टी ज्वाइन नहीं किया उसको आपने टिकट दे दिया, अपराधी भी है। जो व्यक्ति सिटिंग है और पुनः जीतने वाला है उसका टिकट आपने काट दिया बिना कारण, ये असंतोष का कारण है, असंतोष जस्टिफाइड। दूसरा कारण संवादहीनता है। अब बहुत सारे कार्यकर्ताओं की यह शिकायत थी कि साहब सब हम फोन करते हैं, कम से कम हमको बताया जाए कि क्या हमारी गलती है, तो फोन नहीं उठता है। एक दो मामले में तो हमको शिकायत मिली पैसा के लेन देन की।
आर के सिंह ने सवाल उठाया कि टिकट बेचने वाले आखिर स्वच्छ प्रशासन कैसे दे सकते हैं। उधर अपने तल्ख बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहने वाले भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आर के सिंह के बयान को गंभीरता से लेने की बात कही।
बहुत बढ़िया आदमी आर के सिंह, और उन्होंने अगर कुछ कहा है तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि उन्होंने अचानक कह दिया होगा। वो कभी कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आर के सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि टिकट का बंटवारा विचार के बाद ही होता है।
टिकट का बंटवारा होता है, बहुत सोच समझ कर होता है। और भारत बिहार जहाँ तक प्रश्न है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने बीजेपी लेडी एनडीए को, यह सबको एक भारी बहुमत हासिल होगा क्योंकि बिहार की जनता का समर्थन हमको प्राप्त है।
दूसरी तरफ विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठते विरोध के सुर को लेकर निशाना साधने में जुटे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक रैली में इसे लेकर चुटकी ली।
अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो हम लोगों ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि कौन पार्टी हमारे महागठबंधन की किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी एक गठबंधन है। वहां पर आपस में जिस प्रकार का वातावरण बना है, लोग नाखुशी प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, तो चट्टानी एकता वाले महागठबंधन का मुकाबला वो क्या खा करके करेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ।
नीतीश कुमार का इशारा साफ है, वो कहना चाहते हैं कि महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद अपना कुनबा संभाल नहीं पा रही है। सीट बंटवारे को लेकर सहयोगियों की नाराजगी दूर हुई तो अपने सांसदों ने ही विरोध का झंडा उठा लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देती है।
ये थी प्रगति सक्सेना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को इमामगंज विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। वो पहले मखदुमपुर से भी नॉमिनेशन भर चुके हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने जीतन राम मांझी से बात की और उनसे पूछा कि क्या इमामगंज से पर्चा दाखिल करने की वजह वहाँ के विधायक उदय नारायण चौधरी से उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो नहीं?
कोई व्यक्तिगत झगड़ा वहाँ उदय नारायण चौधरी जो वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के, उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, वसूल की झगड़ा है। वसूल ये है कि नीतीश कुमार जिसको बनाते हैं उसको रबर स्टैम्प बना के रखना चाहते हैं, और उदय नारायण चौधरी 10 वर्षों तक नीतीश कुमार का रबर स्टैम्प बन के रहे, और उसी का नतीजा हुआ हमारे 8 विधायक का विधायकी समाप्त करना और जीतन मांझी को भी असंबद्ध विधायक घोषित करना, ये कानूनी रूप में गलत था। वो 8 विधायकों की विधायकी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, साबित होता है कि वो गलत काम किया। तो नीतीश कुमार उनसे हर गलत काम करवाते रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा लगा कि जब हम मुख्यमंत्री बने और हमसे गलत काम कराना चाहा तो हम 3 महीना में ही विद्रोही बन गए, और फिर 9 महीना तक लगातार अपना काम किया जिसका आज माहौल बिहार में बना है। तो हमारा एक तरह से ये डिफरेंस जरूर रहा कि किसी भी शेड्यूल कास्ट को लबर स्टैम्प नहीं होना चाहिए, रिमोट से नहीं चलना चाहिए, वो हमारे शेड्यूल कास्ट के कैरेक्टर को एक तरह से धब्बा दिया है उन्होंने, ये हो सकता है डिफरेंसेस, व्यक्तिगत कोई डिफरेंसेस नहीं।
एनडीए के अंदर भी एक प्रतिद्वंदिता चल रही है आपके और रामविलास पासवान जी के बीच में, इसे लेकर आप क्या कहेंगे?
रामविलास पासवान जी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। रामविलास हमारे सीनियर नेता हैं, वो उन्होंने राजनीति की है 1967 से, हम राजनीति किया है 1980 से। लेकिन जहाँ तक लेंथ ऑफ सर्विस का सवाल है पॉलिटिकल लाइफ का, तो वो हमसे बड़े हैं। लेकिन हम एक जुमला कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर, पत्थर को छाया नहीं और फल लगे बड़ी दूर। तार और जो ये होता है खजूर का पेड़ बहुत दूर होता है, उसमें छाया नहीं होती, लेकिन बर का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, वो छोटा होता है, उसमें छाया होती है। आप कह सकते हैं कि हमारे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए हमारे रामविलास पासवान जी सीनियर नेता हैं, और हम समझते हैं कि सो फार अपलिफ्टमेंट ऑफ दी दलित इज कंसर्न, इस संबंध में जो भी हमने काम किया उसमें उनका समर्थन हमको नहीं मिला।
मैं ये भी जानना चाहूंगा, अभी आरएसएस प्रमुख का जो बयान आरक्षण को लेकर आया है, वो बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन रहा है, इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए ना, नॉर्मली ये मुद्दा अभी तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम फिर देखा कि आज फिर उनका कुछ ये है। उनके बारे में हम व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं, ये हमारा कोई दल की बात नहीं है और कोई हमारे फॉलोवर्स की बात नहीं है। आरक्षण कंटिन्यू रहना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा था, जिस समय 10 वर्ष के बाद रिन्यूअल होता था आरक्षण की अवधि, तो उन्होंने कहा था कि हमको रिव्यू करना चाहिए कि 10 वर्ष अगर हम आरक्षण दिया है तो कितना उन लोगों को फायदा हुआ। अगर फायदा हुआ तो इसमें रिव्यू का मतलब दोनों पॉजिटिव और निगेटिव होता है। पॉजिटिव ये होता है कि जिस मकसद से हमने दिया है आरक्षण, वो मकसद ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और करने की जरूरत है तो उसको और करेंगे, इसीलिए रिव्यू की आवश्यकता है, ये जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। और निगेटिव ये है कि अगर हो गया तो सबको बंद कर दो, तो उस हालत में हम करना चाहते हैं कि जब तक सोशियो और एजुकेशनल जो कंडीशन हमारा है ठीक नहीं होता है, समतुल नहीं होता है, तब तक आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे और कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने अपने पिता की मौत से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। लाल बहादुर शास्त्री की मौत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। हमारे साथी वात्सल्य राय ने अनिल शास्त्री से बात की और उनसे पूछा कि उनके मन में लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेकर किस तरह के संदेह हैं।
देखिए, ऐसा है कि 50 साल पहले जब शास्त्री का निधन हुआ था, उस समय कुछ लोगों को, खासतौर से मेरी माँ को, उनके निधन को लेकर कुछ संदेह हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि पहली बात तो उनका चेहरा नीला पड़ चुका था, उनके माथे पर सफेद धब्बे थे, दाग थे, और उनकी जो डायरी, वो लाल डायरी में कुछ लिखा करते थे रोज अपनी दिनचर्या की बातें, वो डायरी भी उनके साथ नहीं आई थी दूसरे जमानों के साथ। एक थर्मस जो अपने साथ वो लिया लेके चलते थे, उसमें भी वो थर्मस भी नहीं आया। तो ये उस समय ही एक डिमांड हुई, परिवार की तरफ से नहीं हुई, लेकिन लोगों ने करी, मीडिया में भी काफी उसमें छपा कि इसको डेथ को लेकर कोई इंक्वायरी वगैरह होनी थी। खैर वो हुआ नहीं, पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया था क्योंकि वो 11 की सुबह उनका निधन हुआ, दोपहर में वो वहां से दिल्ली आ गए, उनकी बॉडी को ले आए, तो वो सब हो नहीं पाया। तो फिर ये समय समय पर ये उठता रहा, और आज से कुछ 4-5 साल पहले एक RTI द्वारा एक प्रश्न किया गया था भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, कि शास्त्री जी की मौत से संबंधित दस्तावेज हैं उनको डिक्लासिफाई कर देना चाहिए, उनको उनका खुलासा होना चाहिए। तो उसका जवाब जो RTI एक्ट को दिया गया वो ये कि इन दस्तावेजों को हम डिक्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, उनको हम उनका खुलासा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा और इससे हमारे संबंध एक विदेशी मुल्क से खराब हो सकते हैं। तो ये एक जो संदेह था हम लोगों के मन में थोड़ा और बढ़ गया कि मैंने कहा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेजों के खुलासे की बात की है, तो सुभाष चंद्र बोस का हो सकता है, उनका भी किया जा सकता है। तो मेरी तो NDA सरकार से ये मेरी अपील है कि ये जो संदेह के दायरे में जो इनका इनके निधन को तब से देखा जा रहा है वो तो है दूर करने के लिए अगर क्लासिफाई कर देते हैं, दस्तावेजों का खुलासा हो जाता है, हो सकता है कुछ बात सामने निकल के आए।
लाल बहादुर शास्त्री साहब की मौत 50 साल पहले करीब हुई थी और ये आरटीआई से जो जानकारी निकली वो 5 साल पहले निकल कर सामने आई। उस समय कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप लोगों ने उस समय इस तरह की मांग क्यों नहीं उठाई?
नहीं, मैं से तो पूछा था, मैंने तो समय कहा था कि दस्तावेजों का खुलासा होना चाहिए। मुझसे ये पूछा गया था क्या उनको मारा गया, तो मैंने कहा मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ, डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स उनके मौत से संबंधित हैं, एक उनके पुत्र होने के नाते मैं भी आरटीआई एक्टिविस्ट से सहमत हूँ कि इनको डिक्लेरेशन करना चाहिए, मैं तब भी कहता हूँ।
अब आपकी मांग क्या है सरकार से, सीधी मांग आप क्या कर रहे हैं?
मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स को डिक्लेरेशन करें और जिससे पब्लिक डोमेन में आए, और हो सकता है कि कुछ बातें उसमें से निकल के आए जिससे कुछ जानकारी उनके मौत को लेके प्राप्त हो सके, हो सकता है ना भी हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए अगर ममता जी ने मांग किया है तो इसमें कोई हर्ज मैं समझता नहीं हूँ मांग करना।
तो इसे लेकर क्या आप प्रधानमंत्री से मिलने का भी आपका कोई कार्यक्रम है या सरकार से, आप किस स्तर पे आप बात कर रहे हैं?
मैं मिलूंगा नहीं, मेरे भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही है, तो वो चाहे तो मिल के कह सकते हैं।
ये थे लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री, और अब जानते हैं आज के अखबार क्या कह रहे हैं। समीर आत्मज स्टूडियो में
विनीत, आज अखबारों में जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी की जो सिलिकॉन वैली की आज यात्रा है और जो उनसे मिलने का कई लोगों से कार्यक्रम है, कुछ लोगों से मिल भी चुके हैं, वो खबर अखबारों में छाई हुई है। और उसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के घर पे जो छापे की कार्रवाई हुई है, वो खबर उसको भी अखबारों ने काफ़ी प्रमुखता से छापा है। वीरभद्र के घर छापेमारी, सीबीआई ने हिमाचल के मुख्यमंत्री के दिल्ली और शिमला में 13 ठिकाने खंगाले, ये हेडिंग है हिंदुस्तान की। और ये लिखता है नवभारत टाइम्स लिखता है कि बेटी की शादी के दिन वीरभद्र के यहाँ छापे, सीबीआई ने शनिवार को हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 11 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर यूपीए सरकार में 2009-11 के दौरान केंद्रीय स्टील मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, और कल ही उनकी बेटी की शादी भी थी। दैनिक भास्कर ने सिलिकॉन वैली की मोदी की यात्रा के बारे में एक बड़ी स्टोरी की है। अखबार लिखता है हमारी सिलिकॉन वैली में हर एक वर्ग किलोमीटर में 8 स्टार्टअप, रोज नई कंपनी। अखबार ने भारत के 2 आईटी शहरों की यानी बेंगलुरु और हैदराबाद की तुलना की है। अखबार के मुताबिक दुनिया के 44% प्रोग्रामर पिछले वर्ष बेंगलुरु आए, और हैदराबाद शहर जो है वो एक साल में 50,000 युवाओं को नौकरियां दे रहा है। तो दोनों का एक तुलनात्मक ग्राफ दिया हुआ है। उसके अलावा जो भाजपा सांसद आरके सिंह का बयान आया है कि अपराधियों को बेचे जा रहे हैं टिकट, उसकी चर्चा भी अखबारों में प्रमुखता से छप की गई है। जनसत्ता की अगर बात करें तो अखबार लिखता है तो एक मंच पर नहीं हो सकते स्त्री और संत। ये वाक्य है एक कार्यक्रम का जिसमें अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जीवन पर लिखी एक किताब की लेखिका को समारोह से दूर रखा गया था। अखबार लिखता है कि लेखिका को समारोह से दूर रखने पर बरका हंगामा, कलाम की किताब का लोकार्पण रद्द।
शुक्रिया समीर, और हम एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं मुख्य समाचारों के लिए।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण के दौरान पिछले दिनों मक्का में हज में के दौरान हुए हादसे की जांच की मांग की। संयुक्त राष्ट्र के अपने पहले संबोधन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विकासशील देशों की मदद के लिए $2 अरब के एक फंड बनाने की अपील की है। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सीरिया के भविष्य निर्माण में भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में भारी अव्यवस्था के लिए वही जिम्मेदार हैं। मेक्सिको में हजारों लोग 43 छात्रों के गायब होने के एक साल पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद विश्व भारती में।